ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। चतुर्थ स्कंद अध्याय 2, दक्ष द्वारा शिव जी को साप। आज इस अध्याय की 26 नंबर श्लोक। सर्वभक्ष्यादिजावृत्तये धृत विद्या तपोव्रतः वित्त देहेन्द्रिया राम याचका विचरन्तु इह। अनुवाद तथा तात्पर्य। कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। ये ब्राह्मण केवल अपने शरीर पालन के लिए विद्या तपह तथा व्रतादि का आश्रय लें, इन्हें भक्ष्या भक्ष्य का विवेक न रह जाए। ये द्वार द्वार भिक्षा मांगकर अपने शरीर की तुष्टि के लिए धन की प्राप्ति करें। तात्पर्य। नंदीश्वर ने दक्ष को समर्थन देने वाले ब्राह्मणों को जो तीसरा साप दिया वह पूरी तरह कलियुग में लागू होता है। तथाकथित ब्राह्मण और परम ब्रह्म के स्वरूप को समझने में कोई रुचि नहीं दिखाते। यद्यपि ब्राह्मण का अर्थ है वह जिसने ब्रह्म विषय ज्ञान प्राप्त कर लिया है। वेदांत सूत्र में भी कहा गया है अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा। यह मनुष्य जीवन परम ब्रह्म की अनुभूति के लिए है, अर्थात मनुष्य जीवन का उद्देश्य ब्राह्मण पद तक ऊपर उठना है। दुर्भाग्यवश आधुनिक ब्राह्मण अथवा तथाकथित ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न ब्राह्मण अपने अपने व्यवसायिक कर्म या धर्म त्याग चुके हैं, किंतु फिर भी वे अन्य किसी को अपना स्थान ग्रहण करने नहीं देना चाहते। शास्त्रों श्रीमद् भागवत भगवद गीता तथा अन्य वैदिक साहित्य में ब्राह्मण के गुण बताए गए हैं। ब्राह्मण कोई आनुवंशिक पदपी या पद नहीं है। यदि कोई अब्राह्मण उदाहरणार्थ शूद्र कुल में उत्पन्न प्रामाणिक गुरु द्वारा उचित शिक्षा पाकर योग्य बनकर ब्राह्मण बनना चाहता है तो ये तथाकथित ब्राह्मण विरोध करते हैं। नंदीश्वर द्वारा शापित ऐसे ब्राह्मण ऐसी स्थिति में ही है कि उन्हें भक्ष्या भक्ष्य का कोई विवेक नहीं रह गया और वे इस मर्त्य देह तथा अपने पारिवारिक भरण पोषण के लिए ही जीवित रहते हैं। ऐसे पतित बद्धजीव ब्राह्मण कहलाने के योग्य नहीं है, किंतु कलियुग में वे अपने को ब्राह्मण होने का दावा करते हैं और यदि कोई मनुष्य वास्तव में ब्राह्मणत्व को प्राप्त करके प्राप्त करने का प्रयास करता है तो वे उसके मार्ग में बाधक बनते हैं। आधुनिक युग में ऐसी स्थिति आ गई है। चैतन्य महाप्रभु ने इस सिद्धांत की घोर निंदा की है। रामानंद राय से वार्तालाप के दौरान उन्होंने कहा है कि मनुष्य चाहे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ हो या शूद्र कुल में, चाहे वह गृहस्थ हो या सन्यासी, यदि वह कृष्ण विज्ञान को जानता है तो वह गुरु बन सकता है। चैतन्य महाप्रभु के कोई शूद्र शिष्य थे जथा रामानंद राय और हरिदास ठाकुर, यहां तक कि सभी गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख छात्र थे, ब्राह्मण समाज से च्युत थे, किंतु उन्होंने कृपा करके महाप्रभु ने उन्हें कृपा करके उन्हें उच्च कोटि का वैष्णव बना दिया। ओम अज्ञानात् मीरंधस्य ज्ञानांजन शैलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुभे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामहं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदे अहं श्री गुरु श्रीजुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखानितांश्च मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिनि नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी नमः महाबदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिस्यै नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वभक्ष्या द्विजा वृत्तै धृत विद्या तपोव्रतः वित्त देहे इंद्रिय रामा याचका विचरंती ह। ये नंदीश्वर के तीसरे सांप है। उन्होंने पहले दो सांप अभिशाप दे चुका किनको है? जो भृगुवंशी ब्राह्मण जो लोग ने यज्ञ यक्ष यज्ञ के पुरोहित संपादन करने के लिए सब वहां पर इकट्ठी हुए थे और जब ये दक्ष ने अभिशाप दिया किनको? दक्ष किसको अभिशाप दिया? शिव जी को। कई दिनों से आप प्रसंग सुन के आ रहे हैं। दक्ष ने अभिशाप दिया था कि भगवान शिव जी को यज्ञ में कोई भाग नहीं मिलेगा। नौ नंबर श्लोक में पहले श्लोक मैंने पहले दक्ष ने बताया अयं तु देव जजन इंद्र उपेन्द्रादिभिर् भवः सह भागं न लभतां देवैर् देवगणाधम। सभी देवता सभी लोग मना करने पर भी वहां पर ब्रह्मा आदि जितने भी देवता उपस्थित थे बारण करने पर भी दक्ष नहीं माना। अभिशाप दे दिया किनको? शंकर जी को। देवता तो यज्ञ की आहुति में भागीदार हो सकते हैं किंतु समस्त देवों में अधम शिव को यज्ञ भाग नहीं मिलना चाहिए। क्रोधित होकर अभिशाप दे दिया कौन? दक्ष प्रजापति। क्योंकि उसके मन में बड़ा घमंड हो गया था कि प्रजापतियों की अध्यक्ष इसको बना दिया गया था ब्रह्मा जी के द्वारा और देहात्म बुद्धि में आने के कारण उन्होंने शंकर जी को सोचता था कि ये मेरा पुत्री सती को शादी की है इसलिए मेरा ज्वाई है जामाता है तो इसलिए मैं ससुर हूं तो मुझे प्रणाम करना चाहिए मुझे सम्मान देना चाहिए। लेकिन भगवान शंकर जी का स्थिति तो कुछ अलग था। उन्होंने तो ना जीव तत्व में आते हैं ना भगवान विष्णु तत्व में है। खिरंग जथा दधि विकार विशेष जोगात। दक्ष समेत वहां पर जितने भी समाप्त इकट्ठी हुए थे ब्रह्मा समेत प्रलय के समय सभी विनाश हो जाते हैं लेकिन शंकर जी विनाश नहीं होते। शंकर जी की कैलाश कैलाश धाम और शंकर जी नित्य है। वैकुंठ की तरफ उनके धाम कैलाश भी नित्य है और शंकर जी भी सदा विद्यमान रहते हैं। तो शंकर जी की स्वतंत्र स्थिति को न समझते हुए देहात्म बुद्धि के कारण दक्ष जी ने अभिशाप दिया है। तो प्रसंग पहले से ही सुन के आ रहे हैं आप लोग कि किस प्रकार मनुपुत्रियों की वंशावली को वर्णन करते हुए ये मैत्रेय मुनि ने विदुर जी के प्रसंग बता रहे हैं कि स्वयं वो मनु के जो पुत्री देवहूति आकुति और प्रसूति है, आकुति देवहूति प्रसूति तीन कन्या प्रसूति को उन्होंने दिए थे, किनको? दक्ष को, दक्ष को अर्पण किए थे, सॉरी प्रसूति किसको अर्पण किए थे? दक्ष को अर्पण किए थे। तो दक्ष की, दक्ष से जो प्रसूति और दक्ष में से उनकी 13 कन्या जन्म हुए थे और उनमें से एक कन्या उन्होंने दिया था भगवान शंकर जी को, धर्म को 10 कन्या उन्होंने धर्म को दे दिए थे, परिणय एक कन्या अग्निदेव को और एक पितरों को दे दिया था, और सबसे छोटा कन्या जो थी सती उन्हीं को परिणय कराया था, किनसे? शंकर जी को। कहा कि मैं, मेरा इच्छा नहीं था देने के लिए, ये ब्रह्मा जी ने मुझे बोला देने के लिए, है मेरे पिता ने कहने पर मैं ये सती को दे दिया था, ये शंकर जी को, ये कहां रहता है? स्मशान में रहता है, विभूति सरा शरीर में क्या स्मशान का विभूति को लगाते रहता है, सांप बिच्छू ये सारे शरीर में है, कभी भी स्नान नहीं करता है, है? लेकिन गंगाधर है उनके सिर से, ये दुख को भूल गया कि भाई गंगा को धारण करके रखने वाले इसको स्नान करने की जरूरत है, है? शरीर से, सिर से गंगा नहीं बहुत तो जो भी है बड़ा गुस्से में आकर तो अभी सर केवल प्रणाम नहीं किया, क्या दोस्त था शंकर जी की? कि सभा में जो सभी प्रजापतियों की सभा में बैठे हुए थे, सभी यज्ञ प्रारंभ करने की आलोचना कथा चल रहा था, सभी बैठे थे और वो सभी दक्ष जो प्रवेश किया सभी लोग खड़े हो गए, बड़े तेजस्वी था दक्ष क्योंकि प्रजापतियों के अध्यक्ष उसको बना दिया गया था, दो व्यक्ति नहीं खड़े हुए बैठे हुए थे अपने आसन में, कौन कौन? ब्रह्मा और शिव जी। भगवान विष्णु बहुत बुद्धिमान है, वो जानते थे कि इधर को झगड़ा झाटी होने वाला है तो आए नहीं उधर वो उस दिन वहां पधारे नहीं थे, इसलिए सारे समस्या सृष्टि हो गया। तो दोनों बैठे थे तो ब्रह्मा जी तो बैठे, ठीक है, दक्ष का तो मेरे पिताजी है, इसलिए वो आके पिताजी को हाथ जोड़ा और ब्रह्मा जी ने इसको आशीर्वाद दिए, बोले कि ठीक है आसन दिए बैठने के लिए। लेकिन शंकर जी ने चुप बैठे हुए थे, बोला ये क्यों बैठा है? किसका नजर गया? दक्ष का। बोला ये तो मेरा लड़की को शादी किया है, सती को शादी किया है, मेरा जामाता है, मुझे प्रणाम करना इसको जरूरी है, ये मुझे हाथ भी जोड़ा नहीं कि कुछ नहीं, अपने स्थान पर बैठा हुआ चुपचाप। अब भी घोसा आया, क्रोधित हो गया, जन्म ऐश्वर्य सुत शिविर यदमान मदह पुमान। कुंती महाराज ने कहे, दक्ष ने कहा कि मैं ब्रह्मा जी के पुत्र हूं, ऐश्वर्य भी सब मैंने इसको पूरा, प्रजापतियों के राजा हूं, प्रजापतियों के अध्यक्ष हूं, जो ऐश्वर्य से और उसकी ज्ञान की घमंड था, श्री सौंदर्यता के भी बड़े तेजस्वी था, पूरे सभा में ब्रह्मा और शिव को छोड़कर सभी के दक्ष प्रवेश करते हैं सभा में, सबके चेहरा फीका पड़ गया, बहुत तेजस्वी था। तो इसलिए बोला कि ये प्रणाम नहीं कर रहा मुझे, तो क्रोधित हो गया, क्रोध को और संभाल नहीं पाया और पूरा अभिशाप देने के लिए तैयार हो गया, पानी लेकर अभिशाप देने के लिए शंकर जी को तैयार हो गया और अभिशाप दे ही दिया कि ये सभी 33 कोटि देवता सभी को यज्ञ में भाग मिलेगा, लेकिन किसको नहीं मिलेगा? ये देवो का देवैर देवगणा अधम, समस्त देव देवता में जो अधम है भव और शिव, तो इसको नहीं मिलने वाला, यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। तो जो भी ये तो आशीर्वाद था, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते कि आशीर्वाद था, किन के लिए? शिव जी के लिए, कि भगवान नहीं चाहते थे शंकर जी देवताओं के बीच में बैठकर भाग ले, हैं? देवताओं के बीच में क्यों बैठेंगे? वो तो देव देव महादेव है, वैष्णव मानंग जथा शंभु, अन्य देवताओं की तरफ उनकी प्रलय नहीं होता, बा उनकी विनाश नहीं होता है, और वो महान वैष्णव है, ये देवताओं की कर्मकांडी ब्राह्मण के यज्ञ में बैठकर क्यों भाग लें? वो तो हमेशा अपना समाधि से रहते भगवान के चिंतन में। इसलिए प्रकृति में भगवान की ऐसा ही जो उन्हीं की इच्छा के अनुजाई ये शंकर जी को ऐसे ही इनडायरेक्टली शाप दे दिया, कौन? दक्ष ने। लेकिन दक्ष जो है अभिशाप दे दिया कि शंकर जी को यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा, समस्त देवता में इनको अधम कह दिया है। तभी भगवान शंकर जी की जो मुख्य पार्षद कौन? नंदी, उसको सहन नहीं हुआ, है वो क्रोधित होकर उसकी आंख लाल लाल हो गए, तुरंत ही वो शुरू कर दिया अपना अभिशाप देने के लिए, कह क्या रे वैष्णव निंद जो वैष्णव जथा शंभु और उनको ये अभिशाप दे रहा, और ये ब्राह्मण सब बैठकर ये सभा में सब सुन रहे हैं इसको। वैष्णव अपराध जब कोई करता है तो कहीं किसी पर कहीं किसी स्थान पर कोई वैष्णव की निंदा करता है तो क्या कर्तव्य है? कहीं पर बैठे और वैष्णव निंदा हो रहा है, वैष्णव की कोई चल रहा, कोई निंदा कर रहा है, उसको गाली दे रहा है, आपको क्या करना चाहिए? हैं? यदि वो मुख में बोल रहा है तो उसको आप भी मुख में बोलकर आर्गुमेंट करके चुप कराना चाहिए। यदि आपके पास है नहीं तो इसको चुप नहीं कर सकते हो, सोचते कि वरिष्ठ भक्त में इसको बोलने से है। यदि आपका शक्ति है तो बोल रहा तो उसका जीव मैंने उसको तुरंत जीवा को पकड़े काट लेना चाहिए। यदि ये नहीं कर पाते हो, बलात्कार से भागा नहीं, तो कम से कम उस स्थान त्याग कर छोड़ जाना चाहिए, उसको मार डालना चाहिए, नहीं तो स्वयं मर जाना चाहिए, ऐसे कहा गया शास्त्र में। इतना घने जघन्य है कौन सा वैष्णव अपराध? वैष्णव अपराध कभी सुनना नहीं चाहिए। कोई वैष्णव निंदा को सुनता है तो वो भी अपराधी बनता है, बैठकर सुन रहा है। तो इसलिए नंदी ने कहा कि ये सब मुर्गे, ये सब जितने ब्राह्मण ये बैठे हुए इधर, ये भृगुवंशी ब्राह्मण और दक्ष अभिशाप दे रहा था, कुछ लोग को आनंद भी आ रहा था, कोई लोग उसके मजा ले रहे थे, और कुछ लोग चुपचाप नीरव बैठे हुए थे। इसको देखकर बड़ा गुस्सा आया, उसको बोला कि अरे ये ब्राह्मण सब और कुछ कोई प्रतिवाद नहीं कर रहा, अरे इसको इनको आनंद आ रहा है, तो इसलिए ये अभिशाप के योग्य है, इनको भी सब शासन करना चाहिए। हैं? तो इसलिए वो अपने जो स्वामी भगवान शंकर जी की निंदा को सहन न करते हुए तीन अभिशाप दिया। किनको? ब्राह्मणों को, पूरे ब्राह्मण को, मैंने पूरे जनरल ब्राह्मण को उद्देश्य करके तीन अभिशाप दे दिया। पहला अभिशाप क्या दिया था? आप कई दिनों से क्लास सुन रहे हो ये प्रसंग को। पहला अभिशाप क्या था? ये सब दिव्य ज्ञान से भीन हो जाएंगे, हैं? इनकी बत्ती भ्रष्ट हो जाएगा, ये कभी विद्या बुद्धि, ये लोग भौतिक विद्या तथा युक्ति के अनुशीलन से पदार्थ की भांति जड़ बन चुके हैं, वे अज्ञान व सकाम कर्म में लगे हुए हैं। ऐसे मनुष्य ने जानबूझकर भगवान शिव का अनादर किया है, ऐसे लोग जन्म मरण के चक्र में पड़े रहेंगे। और दक्ष ने केवल स्त्री संभोग में ही लिप्त रहता है, अतः इसे शीघ्र ही ये बकरे का मुख क्या प्राप्त होगा। और ये सब दिव्य ज्ञान ने इनमें सारी बुद्धि हर ली, क्योंकि उन्होंने भौतिक सुख के प्रति आसक्त रहते हैं, साथ ही वेदों की अर्थ व्याख्या के प्रति आकृष्ट होते हैं, इसमें आपकी सारी बुद्धि हर ली जाती है और वह पूर्ण स्वरूप में सकाम कर्म में लिप्त रहेंगे। ब्रह्म त्यज पृथक दृष्टि तत्वतः विमुख भवेत। जिस किसी ने दक्ष को सर्वश्रेष्ठ पुरुष मानकर ईर्ष्यावश भगवान शिव का निरादर किया है, वह अल्प बुद्धिमान वाला और अपने दैत्य के कारण वे दिव्य ज्ञान से विहीन हो जाएगा। सबसे पहला विषय वे दिव्य ज्ञान से विहीन हो जाएंगे ब्राह्मण। और दूसरे है कि यह जन्म चक्र में क्या दक्ष को क्या मिलेगा? बकरा का सिर मिलेगा। यह दक्ष के सर जो सिर मनुष्य का सिर देवता के सिर जो इसका लगा हुआ शरीर में, ये सिर को काट के यहां पर क्या लगाया जाएगा? बकरा का सिर। बाद में भगवान ने उसकी वचन को सब शंकर जी ने पूर्ण करेंगे, बाद में बहुत झगड़ा होगा तो युद्ध होगा। लेकिन और कहा कि ये जन्ममृत चक्र में से पड़े रहेंगे, जन्ममृत चक्र में चक्र से मुक्त नहीं हो पाएंगे। और तीसरे अपराध जो कि आज के श्लोक है, उन्होंने कहा कि हैं सर्वभक्षा दिजावृत्ते धृत विद्या तपव्रता। सर्वभक्षा ब्राह्मण सब कुछ खाएंगे। ये कलिजुग के प्रभुपाद ने कहा कि अभिशाप विशेष रूप में नंदी का जो अभिशाप है कलिजुग के लोग कलिजुग का ब्राह्मण के लिए है। तात्पर्य प्रारंभ से प्रभुपाद लगते कि दक्ष कितने जो नंदी का जो तीसरे साप है विशेष रूप में कलिजुग में ये कार्यकारी हो रहा है। जो ब्राह्मण घर में जन्म लेंगे लेकिन सब कुछ खाएंगे। ब्राह्मण को क्या खाना था? ब्राह्मण का खाना क्या? प्राचीन काल में जो सन्यासी होते थे वो ब्राह्मण के घर में भोजन करते थे, दूसरे के घर में नहीं। किस लिए? कि ब्राह्मण के घर में सालग्राम भगवान रहते थे और ब्राह्मण जो कुछ खाते हैं भगवान को अर्पण करके ही खाते थे। ब्राह्मण घर में कभी भी कुछ आमिष भोजन नहीं होता था, लेकिन आजकल सब कुछ चलता है। आजकल ब्राह्मण जन्मगत ब्राह्मण सब कुछ खाते हैं। ये अभिशाप प्रभुपाद कहते हैं ये नंदी के अभिशाप के कारण, ये नंदी ने अभिशाप दिया कि सर्वभक्षा सब कुछ खाएंगे। सर्वभक्षा दीजा, ये कलयुग में ब्राह्मण सब कुछ खाएंगे। चाहे गोस्वामी परिवार में जन्म लेंगे लेकिन कानपुर में फैक्ट्री में जाएगी काम करेगा कर रहे प्रैक्टिकल, और फिर टाइटल रहेगा क्या गोस्वामी है? और सब कुछ करेंगे, नाइट क्लब में जाएंगे, शराब पिएंगे, सब कुछ, सभी प्रकार के सर्वभक्षा दीजा दीजा, ब्राह्मण घर में जन्म हुए जो व्यक्ति सब कुछ खाने वाले होंगे। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि कली युगे राक्षस सब ब्राह्मण घरे जन्मी वे सुजन रे हिंसा करिवारे। इस कली युग में जो सब राक्षस है ये सब कहां जन्म लेंगे? ब्राह्मण के घर में। ये पद्म पुराण में भी बता गया कि कली युग में जितने सब जो राक्षस सब है वो सब ऐसे छद्म वेश में आकर, उनकी कैसे भी हो ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर, किसी लिए ब्राह्मण घर में जन्म लेंगे? वैष्णवों को सताने के लिए, सुजनों को सताने के लिए। ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि ये ब्राह्मण जो है स्मार्त ब्राह्मण, जन्मगत ब्राह्मण, ये खुद ही तो इनके पास में ब्राह्मण के गुण कुछ नहीं होता है, लेकिन यदि हम कोशिश करते हैं किसी को ब्राह्मण बनाने के लिए, ब्राह्मण के गुण गुण उसके जो शिक्षा के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से इसको योग्य बनाना चाहते, तो उसमें भी ये लोग बाधा सृष्टि करना चाहते। प्रभुपाद जी चाहते थे कि कुछ लोग ब्राह्मण बने, योग्य ब्राह्मण, ब्राह्मण के बिना प्रचार कौन करेगा है? इस कण की जो एक लक्ष्य है कि भी प्रभुपाद ने कहा था, कुछ ब्राह्मण को क्रिएट करना, कि कलि युग में सब ये इसका एक तो अभिशाप नंदी का है, कह दिया कि ब्राह्मण सब दिव्य ज्ञान से विहीन हो जाएंगे, जन्मगत ब्राह्मण है। और इसलिए जन्मना जायते शूद्र संस्कारे दिजे उच्चते वेद पठेत भवेद विप्र ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। चार जो स्टेज कहा गया कलि युग में, प्राय कलौ शूद्र संभवा है, जन्म ना जायते शूद्र, ये कलि युग में जितने भी जन्म से सब क्या है? शूद्र। चाहे ब्राह्मण घर में जन्म है लेकिन ये ब्राह्मण घर में जन्म लेने से ब्राह्मण के गुण इसके पास नहीं रहता है, है? ये इंद्रिय रामा, इंद्रियों की इंद्रिय को उपभोग करने में ही लगे रहेंगे। सर्वभक्षा दीजा वृत्ते ध्रुत विद्या तप, ये जितने भी विद्या अध्ययन कराएंगे, पढ़ाएंगे, टीचर की वृत्ति करेंगे, तपस्या करेंगे, व्रत करेंगे, ये सब केवल इंद्रिय राम के लिए, केवल इंद्रिय भोग करने की, अपने शरीर को केवल भरण पोषण करने के लिए लगाए रहेंगे। ब्राह्मण की मुख्य उद्देश्य नहीं रहता शरीर को भरण पोषण करना, ब्राह्मण का मुख्य है कि उन्हें आत्मसाक्षात्कार के मार्ग में आगे बढ़े। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जैसे प्रभुपाद ने कहते ब्रह्म जानाति, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। लेकिन आजकल केवल कलि युग में क्या करते, धागा 3-6 धागा खरीद लिया, कहा बाजार से डाल दिया, बस ब्राह्मण। ऐसे नहीं, ब्राह्मण के गुण जिसके पास में ब्राह्मण का है तो वो ब्राह्मण है। सम दम तप शौच ख्यांति आर्जव एवच ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम, जैसे भगवान ने कहे कि ब्राह्मण का स्वभाव जात कर्म है, जो ब्राह्मण है तो स्वभाव जात कर्म उसकी ये लक्षण है, दिखाई पड़ेगा। इंद्रियों के ऊपर संयमता, मन के ऊपर संयमता, सम दम तपस्या करना, ऑस्टेरिटी, प्रत्येक एकादशी में निर्जल रहना, निर्जल व्रत रखना, नृसिंह चतुर्दशी में रात्रि जागरण के साथ निर्जल व्रत रखना, जन्माष्टमी रामनवमी सब व्रत को पालन करना, ये ब्राह्मण का लक्षण, ये पूरा रहेगा पूरे, कोई रहता है? तपस्या करना, ब्राह्मण का ये स्वभाव है, वो तपस्या करेगा, ऑस्टेरिटी करेगा, ऑस्टेरिटी करेगा, गिरिराज की परिक्रमा लगाएगा। तो ब्राह्मण का जो स्वभाव जात गुण है तपस्या, माने जान बूझ कर शरीर के कष्ट उठाना आध्यात्मिक प्रगति के लिए तपस्या कहते हैं। सम दम तप शौच, पवित्र रहेगा ब्राह्मण, कम से कम कितनी बार स्नान करेगा दिन में? 3 बार गायत्री जपेगा तो इसलिए 3 बार स्नान करना है। शौच सम दम तप शौच ख्यांति सहनशीलता, तुणादपि सुनिचेन तरोपी सहिष्णा मानिना मान देना कीर्तनीय सदाहरी। तो तप ने ख्यांति सम दम तप शौच ख्यांति आर्जव, ख्यांति आर्जव एवच ज्ञान विज्ञान, थियोरेटिकल नॉलेज, और इसको फिर जो पढ़ता है तो इसको ब्राह्मण जो होता है जीवन में भी उतारता है, आचरण भी करता है। धर्म के मार्ग पर चलता है, कभी अधर्म के मार्ग में ब्राह्मण नहीं चलता है, धर्म के मार्ग को ही समर्थन करता है। समा दम तपस क्षांति आर्जम ज्ञान विज्ञान आस्तिक्य धर्म के मार्ग पर हमेशा चलता है। तो इस प्रकार ये सहजा ये जो गुण जिसके पास में है ब्राह्मण है। दूसरे प्रकार कहते कि छह मुख्य कर्म है ब्राह्मण का, जजन जाजन पठन पाठन ध्यान प्रतिग्रह, यज्ञ करना, दूसरे को यज्ञ कराना सिखाना। विशेष रूप में कलि युग में यज्ञ क्या है, कौन सा यज्ञ? संकीर्तन प्राय जजंती ही सुमेधसा। तो सब बुद्धिमान मनुष्य कलि युग में संकीर्तन यज्ञ में स्वयं भाग लेता और दूसरों को भी संकीर्तन सिखाता है। यज्ञ करना, यज्ञ स्वयं यज्ञ करता है, दूसरे को यज्ञ कराना सिखाता है, पढ़ता है और पढ़ाता है, और दान जो दान मिला तो इसको संचय नहीं करता है, ब्राह्मण सब इसको वितरण भी कर देता है, है? दान प्रतिग्रह, ये छह कर्म है। लेकिन इस कलिजुग के जो ब्राह्मण है ये ऐसे ही दुर्भाग्य हो गए कि विशेष रूप में नंदी के अभिशाप के कारण कई लोग इनको अभिशाप दे चुका, बार बार है ब्राह्मण को अभिशाप देते देते लोग उनको डाउन कर दिए। तो नंदी ने बेचारा अभिशाप दिया कि ये सर्वभक्षा सब कुछ खाने वाले हैं, सब कुछ खाएंगे, कलिजुग में जो ब्राह्मण बाज विचार नहीं रखेंगे, ये भगवान को भोग लगा कि नहीं, ऑफरिंग करने के लिए उनके पास में धैर्य नहीं रहेगा, और जो जो नहीं खा जो प्रकृति में भगवान को जो अर्पण नहीं किया जाएगा ऐसे वस्तु भी खाएंगे। हैं, हमें याद है हमारे गांव में एक ब्राह्मण रहता था, बहुत लोग बहुत उसको सम्मान करते थे, सब आके गांव में सबके घर में पूजा अर्चना, जो ब्राह्मण बस्ती था उसमें और सब जो ब्राह्मण थे सब लोग सब कुछ खाते थे, उनका सब माछ मछली ये सब खाते हैं ब्राह्मण लोग। हैं, उड़ीसा बंगाल में मछली खाना बड़ा स्वाभाविक है। रूपाजी ने कहते थे कि जगन्नाथ इतने दयालु है कि ये उड़ीसा बंगाल के लोग जो है 95% जो मछली खाने वाले हैं इनको भी उद्धार कर देते हैं। कौन? जगन्नाथ, विशेष रूप में मलेच्छ जवन और पतित लोगों के लिए भी उद्धार करने के लिए भी जगन्नाथ जी है। उड़ीसा बंगाल सब खाते हैं, तो बंगाल हमारे ब्राह्मण बस्ती सब खाते, लेकिन एक ब्राह्मण था वो खाता नहीं था, वो माछ मछली ऐसे सब लोग जानते थे कि ये निरामिष पूरा सालग्राम पूजन करता है घर में, और माछ मछली ये सब कुछ मांस प्याज रसुन कुछ नहीं खाता, पूरा शुद्ध होना, इसलिए सब लोग उसी को बुलाते थे अपने घर में पूजा कार्य कराने के लिए, कुछ यज्ञ कराने के लिए सब बुलाते थे। तो हम देखा हमारे घर में भी आता था, तो थोड़ा बुढ़ी उम्र में हो गया, तो लगभग उसको 60 साल हो गया, लेकिन एक दिन आकर एकांत में हमारे जो ग्रैंड मदर है और उनके पास में आके बोला मेरे एक इच्छा है और आप लोग मेरा इच्छा पूर्ण कर सकते हो। बोले क्या इच्छा है बोलो, हमें एकांत में बोलूंगा। तो एकांत में बोला क्या बोला, बोला हमारा ये खाने की इच्छा है, क्या आपकी जो क्या है तलाव है उसमें सब मछली छोड़ते थे, हमारे घर के अंदर किचन में मछली नहीं आता था, जो मछली खाने वाले हो घर के साइड में अलग से किचन पर वहां पर अपने कुकिंग करके मछली मांस जो खाते हैं वो कुकिंग करेगा, तो मुझे वहां जो मछली आपके घर के साइड में जब वो लोग फ्राई करते तो उसमें से 2-4 पीस मुझे एकांत में दे सकते पीछे लेके। तो ये लगता है कि इसका अभिशाप सबको लग गया, किसका अभिशाप है, ये नंदी का अभिशाप, सर्वभक्षा दीजा, ब्राह्मण सब कुछ खाएंगे इस कलयुग में, मछली भी खाएंगे, अंडा खाएंगे, मांसाहार करेंगे, शराब पिएंगे, ब्राह्मण सब, ये अभिशाप दे दिया सब, नंदी का अभिशाप है, क्या करेंगे। विशेष रूप में किस कौन सा ब्राह्मण को यह अभिशाप है, भृगुवंशी ब्राह्मण है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वत ठाकुर ने तो कोई प्रश्न पूछा कि ये जो रामचरित मानस है ये लेखा कौन, ये किसको क्यों आप लोग इतने इंपोर्टेंस नहीं देते हैं, आप लोग वाल्मीकि रामायण को पढ़ते हैं, वाल्मीकि रामायण बोलते हैं, प्रभुपाद जी भी बोलते हैं वाल्मीकि रामायण पढ़ो, ये जो तुलसीदास जो लेखा है रामचरित मानस इतना लोकप्रिय है इसको आप लोग क्यों इतना ऑथेंटिक, गोस्वामी लोग ने इसको क्यों नहीं माना इतना। तो कहे कि क्योंकि ये भृगुवंशी ब्राह्मण है, कौन, तुलसीदास की जो वंश परंपरा है वो भृगुवंशी ब्राह्मण है, भृगुवंश से आया है, इसलिए वैष्णव इसको आदर नहीं करते, क्योंकि वैष्णव मानांग यथासंभव उनकी उनकी जो द्रोही है दक्ष के सपटर थे, ये भृगुमुनि दक्ष को सपोर्ट करते थे, दक्ष यज्ञ में दक्ष को सपोर्ट करते थे, उसके पुरोहित करते थे, उसके पुरोहित बनकर थे, इसलिए भृगुवंशी ब्राह्मण को साधारणतः वैष्णव लोग इतने आदर नहीं करते, वैष्णव मानांग यथासंभव की विरोधी जो द्रोही थे। दक्ष को बहन वो अभिशाप क्या दक्ष ने अभिशाप दिया और ये लोग इसको सहन किया, इसलिए नंद ने सहन नहीं किया। नंद ने कहा कि नहीं, कैसे मेरे प्रभु का अभिशाप, ये सारे चुपचाप बैठे हैं, इतनी बड़े महान वैष्णव शंकर जी वो तो सब सहन कर रहे हैं, बैठे तुणाल भी सुनी चना तरह रूपी सचना, शंकर जी कुछ नहीं बोले, लेकिन इनको ये अभिशाप दे रहा, हम कैसे सहन कर सकते, हमारा प्रभु सहन करिए चलो, लेकिन हम नहीं सहन करेंगे। तुरंत खड़े हो गया नंदी, कह के सर्व भक्ष्या दिजा, ब्राह्मण सब खाएंगे और वृत्ते ध्रुत विद्या तपर्वता है, ये ब्राह्मण केवल अपने शरीर पालन के लिए विद्या तप तथा व्रतादि का आश्रय लेंगे, केवल शरीर पालन करने के लिए, ये कुछ नहीं मानेंगे। भगवान रामचंद्र जी को भी छोड़े नहीं है, गया में भगवान ने जब मैंने रामचंद्र सीता जी के साथ जो वहां पिंडदान दे रहे थे, तो वो पकड़ दक्षिणा के लिए उनके पीछे पड़ गए, किनके पीछे, भगवान के पीछे, सीता जी को साड़ी कुछ पकड़ लिए, छोड़े नहीं, दक्षिणा देना पड़ेगा, है लास्ट में भगवान ने स्वयं अपने अस्त्र से काट दिए इनके, सीता जी का जो साड़ी का अंतिम भाग को ऐसे काट के बहुत मुश्किल से उसे निकल गए। ये बड़े इनको वो भी अभिशाप दिया है, कौन ब्राह्मण को, वो ब्राह्मण को सीताजी का भी अभिशाप है, ये कई जगह पर अभिशाप प्राप्त कर करके है, इसलिए ये जो कुछ कमाएंगे कभी भी इनके पेट भरेगा नहीं, किनके, ब्राह्मण के, गए को जो पिंडदान के सीताजी ने जो पिंडदान दिए, मैंने रामचंद्र जी ने गए थे जो सरंजा में काठी करने के लिए अपने दशरथ जी के पिंडदान देने के लिए, लेकिन बीच में सीताजी थे एकले कुटिया में, और हठात साधे का टाइम ठीक एग्जैक्ट समय हो गया था, इनका कोई सरंजाम नहीं आया था, लेकिन दशरथ जी ने स्वयं आ गए साध लेने के लिए, दशरथ जी ने हाथ बढ़ाए साध पिंड देने के लिए, और सीता जी ने क्या करे, कुछ है नहीं तो बालू से जो वो कौन सा नदी हो, फल्गु नदी भी उसका नाम हो गया फल्गु नदी, वो बालू पिंडदान दे दिए, लेकिन साखी रख के, कोई साखी सब थे, फल्गु वो नदी था, है तुलसी महारानी गाय और से ब्राह्मण, इनको सब साखी रख के पिंडदान दे दी। लेकिन भगवान रामचंद्र जी ने जो लेकर आए वापस से सरंजाम लेकर आए, बोले कि सीता जी को है कि आप श्राद्ध का समय चला गया, अभी तो आपका पिताजी आकर श्राद्ध मांगे, तो मैं दे दिया हूं, क्या श्राद्ध दे दिया हूं, बालू पिंड दे दिया, और कहा मेरे पास कुछ था नहीं, तो साखी कौन है, भगवान कहे कि ऐसा कैसा कर दिया आप, साखी कौन था, तो ये सो साखी है, लेकिन ये लोग साखी देखे, तो गाय सोचा कि इतने सारे ब्राह्मण लोग सोचे कि यार ये भगवान ने इतने सारे नहीं रामचंद्र जी इतने सारे संजम आ गए, अब ये दोबारा यहां पर साधा होगा तो हमको सब ये मिलेगा दक्षिणा के रूप में, सब ले जाएंगे हमको मिलेगा, तो इसलिए बोले हमको पता नहीं। गाय भी सोचा कि ये सब जब भूख भूख लागेगा, जो केला फेला रहेगा इतने सारे पता, वो सब मुझे खाने मिलेगा, वही बोला मेरी पता नहीं है साध। नदी ने भी साफ मने क्या, वो भी साफ मने बोला नहीं कि नहीं ऐसा, सब लोग चाहते थे कि भगवान के दोबारा इधर साधक, लेकिन सीता जी को गुस्सा आया, बोले सब देखे इनको साधक सब देखे, साखी रखी में दिया, कोई नहीं साध मने कोई नहीं साखी दे रहा मेरा आप सपक्ष में कि मैंने पिंडदान दिया हूं दशरथ जी को, दशरथ जी ने स्वयं हाथ बढ़ाए, आज भी वो फल्गु नदी के किनारे स्थान है, हाथ बढ़ाए में पिंडदान दिए, कोई साखी नहीं दे रहे, गुस्सा होकर अभिशाप दिए सीता जी ने सभी को, भाई तो सुख जाएगा ये नदी, तो सूख जाएगा और तुम्हारे जब खुदाई करेंगे तो पानी निकलेगा। तो सूखा रहेगा, बाद में वो रोने लगा तो कहे कि नहीं तुम्हें सूखा रहेगा लेकिन थोड़ा सा खुदाई करने से पानी निकलेगा, फल्गु नदी बन गया, वो फल्गु बैराग्य कहते ना, ऊपर से कर्म इंद्रियों को जो संयम करके रखा है लेकिन अंतकरण में हमेशा इंद्रिय भोग की सोच रहा है, इंद्रिय भोग करने का सोच रहा है, तो उसको कहते फल्गु बैराग्य, फल्गु नदी की तरफ ऊपर से सूखा देखता है लेकिन थोड़ा सा खुदाई करने से पानी निकलेगा, है ना। और उन्होंने ब्राह्मण को यह अभिशाप दिया, तुम कभी भी तुम्हारा पेट भरेगा नहीं, हमेशा ऐसे भिखारी की तरह मांगते रहोगे घूमते रहोगे। सीताजी ने इनको भी अभिशाप दिया, गाय को भी बोले कि तेरा भी पेट नहीं भरेगा, जितना तुझे खिलाने पर भी फिर भी तू हमेशा भगवान ने स्वयं खिलाकर भी तुझे तृप्त नहीं कर पाएंगे। किसको, गाय को, गाय देखना कितना भी पेट भर फिर भी मुख ऐसे करे, कहीं भी जाए गाय का, तो तेरा सब कुछ पवित्र रहेगा लेकिन मुख अपवित्र, तुम झूठ बोला, गाय का सब कुछ पवित्र है लेकिन मुख अपवित्र है, सीताजी के अभिशाप है। तुलसी महारानी के भी अभिशाप दिए सीताजी, कई कुत्ते तुम्हारे ऊपर पिशाब करेंगे क्योंकि तुमने भी साखी नहीं दिया है, तुम सब साखी थे, सब साखी रखे होते भी मैं सत्य को कोई तुम लोग प्रमाण करने में तुम्हारा मेरा सहायता नहीं किया, तो सभी लोग को अभिशाप देते। वहां पर ब्राह्मण को भी अभिशाप है सीताजी का, पेट नहीं भरेगा इनकी, ये हमेशा भिखारी की तरह पीछे भटकते रहेंगे इधर उधर सब समय पेट पोषने के लिए। वही बात को यहां पर नंदी भी कहा कि द्रुत विद्या तपव्रता वित्त देह इंद्रिय रामा। ध्रुप जितनी प्रकार जो विद्या पढ़ाएंगे तथा कथित टीचर बन जाएंगे, शास्त्र पढ़ाएंगे के तपस्या भी करेंगे, कई व्रत भी रखेंगे, लेकिन इनका मुख्य लक्ष्य रहेगा क्या है? कैसे उदर को पोषण करना, इनका पेट कभी नहीं भरेगा। वित्त देह इंद्रिय राम, जो कि इन्हें भिक्षा ने ये द्वार द्वार भिक्षा मांगकर अपने शरीर की तुष्टि के लिए धन प्राप्ति करें। ब्राह्मण को कभी संतोष नहीं कर सकते, कलयुग के ब्राह्मण को विशेष करके, जितने भी दोगे और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ये तृप्त नहीं होंगे, इनके कभी पेट नहीं भरेगा। ये अभिशाप जाचका विचरंती है, जाचक माने भिक्षु की तरफ घर घर द्वार द्वार घूमते रहेंगे ये ब्राह्मण हमेशा है। तो इसलिए प्रभुपाद ने कहते कि उनकी गुरु महाराज जो भक्ति सरस्वती ठाकुर ये सब आंक अपने सामने रखते हुए कि दक्ष ने क्या नंदी के अभिशाप, सीताजी के ही अभिशाप ब्राह्मण के ऊपर इस कलयुग में, और पद्म पुराण कहते कि ब्राह्मण ये सब राक्षस लोग ही ब्राह्मण ने इस कलयुग में राक्षस लोग ही सब ब्राह्मण के घर में जन्म लेंगे, इसलिए उन्होंने कुछ योग्य ब्राह्मण बनाने के लिए प्रयास किया है? कौन? भक्ति सरस्वती ठाकुर। इन्होंने रिवोल्यूशन स्टार्ट किया पहले समाज में कि जन्मगत ब्राह्मण कोई ब्राह्मण नहीं है, ये बोलने का पहले किसकी हिम्मत नहीं था लेकिन पहले बार हिम्मत निकालकर कौन बोला? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। इन्होंने कहा कि जन्मगत ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है, शास्त्र कहता है जो योग्यता के अनुसार जिसके पास ब्राह्मण का गुण है वो ब्राह्मण कहलाएगा है। इसलिए उन्होंने कहे कि कुछ ब्राह्मण को ट्रेनिंग देकर मैं योग्य बनाऊंगा और इनको भी विग्रह की अर्चन कैसे, अर्चन का अधिकार भागवत की प्रवचन करना, इसे ब्राह्मण का कर्म है सत्कर्म निपुण, जो ब्राह्मण का जो कर्म मैं इनको ट्रेनिंग देकर सिखाऊंगा। इसलिए उन्होंने गौड़ीय मठ की संस्थापना किया, स्वयं मंदिर बनाए, क्योंकि स्मार्त मंदिर में कोई घुसने नहीं देगा, जन्मगत ब्राह्मण नहीं होता। आज भी गांव में सब जो है तो ब्राह्मण घर में जन्म नहीं हुआ तो जो मंदिर उसमें वो मंदिर में नहीं देंगे आपको घुसने के लिए, पूजा करके नहीं कर सकते। इसलिए भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर ने स्वयं अपना मंदिर बनाया, गौड़ीय मठ मंदिर बनाए, स्वयं भक्तों को दीक्षा दिया, हरिनाम दिया, फिर इनको गायत्री देकर इनको योग्य बनाए, ब्राह्मण का गुण ये अधिकारी बनाकर फिर इनको सब ब्राह्मण का कर्म करने में लगा दिए। कहे कि भगवान ने यही गीता में कहा, चतुर्वर्ण मया सृष्ट गुण कर्म विभाग, गुण और कर्म के अनुजाई जाति विभाग है, ये केवल जन्मगत नहीं है, गुण कर्म विभाग गुण और कर्म के आधार पर। ये सब जानते थे लेकिन कोई इसको प्राक्टिकल करने के लिए साहस नहीं करते थे, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सबसे पहले इसको भारत के अंदर प्रैक्टिस किया और प्रभुपाद ने इसको पूरे विश्व में प्रैक्टिस करके दिखाए। ये तो केवल शूद्र तक भारत का जो शूद्र को ब्राह्मण बनाए, चैतन्य महाप्रभु के उदाहरण प्रभुपाद ने देते कि तो चैतन्य महाप्रभु भी रामानंद राय शूद्र परिवार में जन्म लिए थे लेकिन उनको वैष्णव बनाए, महान वैष्णव ब्राह्मण से भी ऊपर बनाए। हरिदास ठाकुर जबन कुल में जन्म लिए थे, इनको भी नाम आचार्य बनाए, इस कलयुग के युगधर्म ना हरिनाम संकीर्तन के बा हरिनाम जप और संकीर्तन के जो आचार्य है वो है हरिदास ठाकुर। गौरांग महाप्रभु इस प्रकार व्यक्ति को भी इतनी ऊपर उठाए है, और भक्ति ज्ञान सरस्वती ठाकुर ने भी इस प्रकार जो योग्य व्यक्तियों को इनको शिक्षा देकर फिर इनको ब्राह्मण कर्म करने के लिए उपयोग किया। और प्रभुपाद ने पूरे इसके नीचे म्लेच्छ जवन को सारा विश्व में भी जाकर भ्रमण करके इनको भी ब्राह्मण बनाया। सत्कर्म निपुण विप्र मंत्र तंत्र वैसे विशारद अवैष्णव गुरु नश्यात वैष्णव सुपच गुरु है। जो मंत्र तंत्र विशारद व्यक्ति सारे वैदिक मंत्र तंत्र सबको जानता है, सबको शास्त्र पढ़ के ऐसे पंडित बन गया संस्कृत के है। सत्कर्म निपुण छह प्रकार के कर्म भी करता है, ब्राह्मण का छह कौन सा, जजन जाजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह आदि छह कर्म भी करता है, लेकिन यदि वैष्णव नहीं है, वैष्णव शास्त्र नहीं पढ़ता है, भगवान विष्णु की भक्ति का प्रचार में सहयोग नहीं करता है, तो वो गुरु बनने की योग्य नहीं है, आचार्य बनने की योग्य नहीं है। लेकिन यदि कोई चांडा घर में कुत्ता भक्खी मिलेच्छ बा जवन भी है, वो भी यदि भगवान विष्णु की भक्ति करता है तो फिर वो आचार्य बा गुरु बन के है, जो कि ब्राह्मण से भी उच्च पद को प्राप्त कर सकता है। किबा शूद्र किबा न्यासी किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के न है जेहु कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। रामानंद राय को शिक्षा देते हुए बा रामानंद राय के प्रसंग में महाप्रभु ने डिक्लेयर किया, इसको कहे कि प्रकृत में कोई ब्राह्मण है या किबा विप्र कोई किबा न्यासी कोई सन्यासी हो भाई कोई शूद्र हो, इसमें जाने आना कुछ नहीं है, लेकिन यदि व्यक्ति के पास में योग्यता है, यदि वो कृष्ण तत्व को ठीक ठीक से समझा है, कृष्ण तत्ववेता है, तो आचार्य या गुरु का भूमिका निभा सकते हैं। तो इसी प्रकार इसीलिए इस कलयुग में ये सब हम देखते हैं कि जन्म से कोई ब्राह्मण है नहीं, जन्मगत ब्राह्मण के जो अन्य अन्य युग में जो स्थिति था इस कलयुग में इस कार्यकारी नहीं है इस युग में। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी तथा उनकी गुरु महाराज ये विशेष रूप में योग्यता के आधार पर कुछ ब्राह्मणों को तैयार करने के लिए प्रयास किए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं मैं इस्कन में इस्कन को संस्था को इसलिए स्थापना किया हूं कुछ ब्राह्मण को क्रिएट करने के लिए, क्योंकि प्रचार कौन करेगा, प्रचार ये नहीं तो क्षेत्रीय वैश्य शूद्र नहीं करेंगे, कौन प्रचार करेगा विशेष रूप में, ब्राह्मण, ब्राह्मण का काम है प्रचार करना है। संन्यास लेना प्रचार करना है ब्राह्मण का काम है। संन्यास जो वर्णाश्रम धर्म में ब्राह्मण को ही संन्यास कहा गया कंपलसरी लेने के लिए, कंपलसरी ब्राह्मण के लिए संन्यास लेना कंपलसरी है, क्षत्रिय के लिए ऑप्शनल है, क्षत्रिय को वानप्रस्थ तक, जैसे महाभारत युधिष्ठिर जब सुने कि भगवान अंतर्ध्यान हो चुके हैं पांडव लोग वानप्रस्थ लेकर निकल गए घर से, क्षत्रियों के लिए वानप्रस्थ तक कहा गया, और वैश्य को कहा गया कि उसके लिए वानप्रस्थ ऑप्शनल है, वो गृहस्थ में रह सकता है या इच्छा यदि हुए तो कोई योग्य बनता तो वानप्रस्थ तक जा सकता है, और शूद्र को हमेशा कौन सा आश्रम में रहना, हमेशा ग्रस्त में रहना, शूद्र कभी नहीं ऊपर नहीं है, शूद्र को शूद्र हमेशा। आप तो कलयुग में सारे शूद्र हैं, समाज में सन्यासी कहां से आएंगे, कलयुग में कड़ो शूद्र संभव, सारे शूद्र है तो सन्यासी कहां से आएंगे। शूद्रों को कहा गया शास्त्र में कि गृहस्थ ही रहे, शूद्र को तपस्या करता था, तृतीय युग में एक शूद्र संभुक था तपस्या करता था, ब्राह्मण का कर्म करना चाहता था, भगवान रामचंद्र जी ने जाकर इसका क्या कर दिए, काट दिए इसको, शूद्र को तपस्या करने का अधिकार नहीं है, वो जाकर पैर को नीचे टांग को ऊपर करके नीचे सिर को झुलाकर और खाना पीना छोड़ के बस तपस्या कर रहा था है? तो उसको अयोध्या में बारिश होना बंद हो गया कई दिनों तक, रामचंद्र जी के राम राज्य में बारिश नहीं हो रहा, क्या हो गया, सब हाहाकार मच गया। फिर क्या हो रहा, रामचंद्र जी राजा है स्वयं भगवान, राम राज्य में बारिश नहीं, जैसे नारद जी ने बताया कि वो देखो वो तपस्या कर रहा है वो शूद्र, चलो भगवान गए ढूंढते ढूंढते देखे कि हाँ वो टांग को ऊपर करके पेड़ में झूल रहा है खाना पीना छोड़ के बस, और सीधा गए समाप्त किए, इसके गर्दन काट दिया, वैसे भगवान के हाथ मरा तो उसका सदगति हो गया है? लेकिन शूद्र को तपस्या नहीं करने कहा, शूद्र सिर्फ क्या करेगा, घर में रहेगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, शूद्र के लिए केवल हरिनाम संकीर्तन को आश्रय कर सकता है कलयुग में, तो उसके लिए और जगह प्रचार प्रचार करना उसके लिए नहीं होगा, शास्त्र नहीं पढ़ सकता, हो शास्त्र पढ़ेगा और प्रचार कैसे करेगा, इसलिए कलयुग में सबसे प्राय मेजोरिटी शूद्र, लेकिन इसमें से फिर भी जन्म ना जाए तो शूद्र संस्कार दीजिए उच्चते, पर ऐसे ही शूद्र भी किसी सदगुरु के आश्रय लेकर प्रामाणिक आचार्यों के आश्रय लेकर फिर वो दोबारा जन्म ले आध्यात्मिक जन्म ले सकता है, दीजिए बन सकता है, पहले तो शुक्र जन्म माता पिता से प्राप्त किया था ये शरीर को पंचभौतिक शरीर, लेकिन सद्गुरु स्वीकार करके फिर वो दीजिए दोबारा आध्यात्मिक जन्म ले सकता है।